ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्लोक 51। है आप लोगों में एतावद वर्णित गुण भक्त्या भक्तेन निर्गुण प्रह्लादम प्रणतम प्रीतः जत मन्यु अभासत। एतावद् वर्णित गुण भक्त्या भक्तेन निर्गुणः प्रह्लादम प्रणतम प्रीतो जत मन्युरभासत। श्री भगवान वाच प्रहलाद भद्रम भद्र भद्रम ते प्रीतोहम ते सुरोत्तमा वरम वृणीस्वाभिमतम काम पुरोस्म्यहम निलाम माम प्रीणतया आयुष्मन दर्शनम दुर्लभम ही में। दृष्ट्वा माम पुनर्जन्तु आत्मानं तप्तुमर्हति प्रीणन्ति यथ माम धीरः सर्वभावेन साधवः। श्रेयस्कामा महाभागः सर्वासामाशिषां पतिम्। श्री नारद उवाच एवं प्रलोभ्यमानोऽपि वरैर्लोक प्रलोभनैः एकांतित्वात् भगवति नैच्छत्ता न सुरोत्तमः।
भक्ति से भक्तेन भक्त प्रहलाद महाराज द्वारा निर्गुण दिव्य भगवान प्रहलादम प्रहलाद महाराज को क्रोध को भस्म करके अभासत इस प्रकार बोलने लगे। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। अनुवाद ऋषि नारद ने कहा इस प्रकार अपने भक्त प्रहलाद महाराज द्वारा दिव्य पद से प्रार्थना किए जाने पर भगवान नृसिंह देव शांत हो गए। उन्होंने अपना क्रोध त्याग दिया और दंडवत प्रणाम करने वाले प्रहलाद पर अत्यधिक दयालु होने के कारण उनसे इस प्रकार बोले। तात्पर्य यहाँ पर निर्गुण शब्द महत्वपूर्ण है। मायावादी दार्शनिक परम सत्य को निर्गुण या निराकार मानते हैं। निर्गुण भौतिक गुणों से विहीन का सूचक है। दिव्य गुणों से पूर्ण होने के कारण भगवान ने अपना क्रोध त्याग दिया और प्रहलाद से बोले, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की।
जय श्री प्रभुपाद। एतावद वर्णित गुणा, इतना ही, एतावद का अर्थ है इतना ही, इतना ही वर्णन किया प्रहलाद महाराज ने भगवान के गुणों को। वैसे गुण अनंत हैं, कहे नहीं जा सकते, लेकिन उन अनंत गुणों में कुछ गुणों का ही वर्णन प्रहलाद महाराज ने किया। एतावत का ही अर्थ है इतना ही वर्णन किया। कैसे? भक्त्या, भक्ति से, श्रद्धा से, भक्ति पूर्वक वर्णन किया। भक्ते न प्रहलाद महाराज के द्वारा वर्णित हुआ। किसका गुण? निर्गुण का गुण, जो वास्तव में प्राकृत गुणों से शून्य है, पर फिर भी अनंत दिव्य गुणों से युक्त है। ऐसे भगवान नृसिंहदेव के गुणों का वर्णन किए, और वर्णन करने के बाद फिर भगवान को प्रणाम किए, प्रणतम। भगवान से प्रार्थना करने के बाद फिर प्रणाम किए भगवान को, तो इससे श्री भगवान बहुत प्रसन्न थे। वो चेहरे से सब पता लग रहा था। नारद जी कहते हैं प्रीत, भगवान प्रसन्न हो गए। जत मन्यु, जत का अर्थ है नियमित, अपने अंदर बस में करके। मन्यु क्रोध, क्रोध को उन्होंने छोड़ दिया और बहुत प्रीत प्रसन्न हो गए। और अभासत इस प्रकार बोले, इतनी लंबी लंबी स्तुति किए देवता लोग, लेकिन भगवान प्रसन्न नहीं हुए, बोले नहीं, वो क्रोध में ही थे। परंतु बालक प्रहलाद की बातें सुन करके भगवान प्रसन्न हो गए और क्रोध छोड़ दिए। भगवान शांत हो गए, क्योंकि वे निर्गुण हैं, प्राकृत गुण में नहीं है, और प्रकृति के वश में नहीं है, प्रकृति से परे हैं। तो इतने प्रचंड क्रोध को दबा लेना यह भगवान के लिए ही संभव था। एक मिनट पहले जो इतने क्रोध में थे, वे क्रोध को दबा दिए। इस तरह क्रोध पर भगवान का नियंत्रण है। भगवान के भक्त भी ऐसे ही होते हैं, वे क्रोध को दबा लेते हैं। क्रोध होता है उनमें, लेकिन क्रोध को पी लेते हैं, दबा लेते हैं। और जो प्रकृति के बंधन में पड़े हुए हैं, माया में हैं, वे क्रोध को प्रकट कर देते हैं। उनका क्रोध प्रकट होता है और बहुत सा बाई प्रोडक्ट क्रोध में, हाथ चलाना, लात चलाना, बाणी से गाली देना, ये सब चीज होने लगता है। लेकिन भगवान क्रोध में एक बार मारे हिरण्यकश्यपु को, असुरों को, और प्रहलाद की प्रार्थना से क्रोध को दबा दिए। प्रीत जत मन्यु, प्रसन्न हुए, क्रोध समाप्त हो गया और इस प्रकार बोले, श्री भगवान वाच, भगवान ने कहा। प्रहलाद जब प्रणाम किए भगवान के पास खड़े हुए प्रणाम करके तब भगवान उनसे बोले। सबसे पहले नाम रख करके संबोधन कर रहे हैं, यह प्रेम के कारण प्रहलाद सभी के बीच में, सभी देवता सुन रहे हैं और भगवान संबोधित करते हैं प्रहलाद, यह प्रेम का संबोधन था। भद्र और दूसरा संबोधन कर रहे हैं भद्र, हे परम सुशील भद्रम ते, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा मंगल हो। प्रीतो हम, अहम प्रीत, मैं तुम पर प्रसन्न हूं। अहम ते प्रीत, तुम पर प्रसन्न हूं। असुरोत्तम या सुरोत्तम, तुम असुर वंश में जन्म लिए हो लेकिन समस्त देवताओं से भी उत्तम हो, श्रेष्ठ हो, ये सुरोत्तम का अर्थ है। और असुरोत्तम असुर कुल में सिरमौर, मैं तुम पर प्रसन्न हूं, तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम मुझसे वरम वृणीस्व, वर मांगो अभिमतम, जो तुम्हारी इच्छा हो, जो तुम चाहते हो, तुम्हारा जो अभीष्ट हो, वह वर मुझसे मांगो। मैं काम पूरा अस्मि निर्णय, मैं मनुष्यों का काम पूरक हूं, उनको जो भी इच्छा होती है, जो भी इच्छा है उसको मैं देता हूं। काम पूरा है अस्मि, पूरा का अर्थ होता है बाढ़, वर्षा, मनुष्यों की कामनाओं को मैं वर्षा की तरह पूरा कर देता हूं। जैसे मेघ वर्षा करके नदी सरोवर आदि को भर देते हैं, ऐसे ही जितनी भी कामनाएं हो सकती हैं उन समस्त कामनाओं को मैं पूरा कर देता हूं। तुम्हारी जो भी इच्छा हो, जितनी इच्छा हो, वो मुझसे मांगो। वृणीस्व, वरम वृणीस्व, और मुझ पर विचार कर लो कि मैं कौन हूं। तो मैं सबसे बड़ा दाता हूं और तुम पर बहुत प्रसन्न हूं, मैं अतिशय प्रसन्नता से तुमको वर देना चाहता हूं। जो भी अभिमत है, जो भी अभीष्ट है तुम्हें, वो मांगो। फिर भगवान कहते हैं, माम अपनत वा आयुष्मन दर्शनम दुर्लभम ही में, माम अप्रीणता, मेरे प्रसन्न नहीं होने पर मेरा दर्शन दुर्लभ है, मुझसे भेंट करना बहुत दुर्लभ है। तो मैं तुम पर प्रसन्न हूं, इसी कारण से मैं तुम्हारे पास हूं, तुमको दर्शन दे रहा हूं। तो मुझसे भेंट होना बड़ा कठिन कार्य है, परंतु प्रसन्न होकर के मैं तुमको दर्शन दिया। जब तक कोई व्यक्ति मुझे प्रसन्न नहीं करता है तब तक मेरा दर्शन मिलना बहुत दुर्लभ है। तो दुर्लभ दर्शन तुमको हुआ है, हमसे भेंट हुई है, तो जो इच्छा हो तुम मांगो। दृष्टवा माम न पुनर्जंतु आत्मानं तप्तुमर्हति, मुझसे भेंट हो जाने के बाद किसी भी व्यक्ति को अपने विषय में पश्चाताप नहीं करना चाहिए, अर्थात ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरा मनोरथ, मेरी कामना बाकी रह गई, मैं अपूर्ण मनोरथ रह गया। मुझसे भेंट होने के बाद फिर जीव शोक नहीं कर सकता है कि मैं अकृतार्थ रह गया, मुझको ये चीज नहीं मिला, वो नहीं मिला। तो तुम सोच लो खूब अच्छा, अच्छी तरह से, और जो चाहिए, जैसे ब्रह्मा जी का पद या इंद्र का पद या योग सिद्धि या पाताल की संपत्ति, जो तुम्हारी इच्छा हो मांगो, सब कुछ दे सकता। ये संसार के, जगत के स्वामी बोल रहे हैं भगवान। बहुत महत्वपूर्ण बात है भगवान। इसीलिए जितने भी धीर लोग हैं, साधु हैं, बड़े बड़े लोग हैं, वो मुझे प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। पीड़न्ति ही अथ, अथ का अर्थ इसलिए, मुझे प्रसन्न करना चाहते हैं। सर्वभावेन साधु, सभी भाव से हमारे में स्थित होते हैं। जैसे पांच भाव है, दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, माधुर्य भाव। तो ये इसमें से अपनी पसंद के अनुसार वे मुझसे जो भी भाव स्थापित करते हैं तो पूरे दिल से करते हैं, सर्वभावेन। और दास भाव है तो पूर्णतः दास भावना से, सख्य भाव है तो उसमें भी पूर्ण भाव। या माधुर्य भाव, जो भी भाव है उस भाव की पूर्णता के साथ हमको प्रसन्न करना चाहते हैं, अपने सखा के रूप में, स्वामी के रूप में या प्रियतम के रूप में। पीड़न्ति यथमाम धीरा, धीर जो प्रकृति के गुणों से विशुद्ध नहीं होते हैं, ऐसे धीर लोग, बड़े बड़े विद्वान, ज्ञानी हमको प्रसन्न करना चाहते हैं। हमको प्रसन्न करने के लिए बहुत बहुत उपाय करते हैं। प्रीणन्ति यथमाम धीरा, मुझको प्रसन्न करने में बड़ा प्रयास होता है, और धीर ज्ञानी विवेकी मुझको प्रसन्न करना चाहते हैं, और वही मैं इस समय तुम पर बिल्कुल प्रसन्न हूं। अतः तुम्हें अवसर दे रहा हूं, जो चाहिए वो मांग लो। इस प्रकार भगवान नरसिंह देव प्रह्लाद महाराज पर प्रसन्न होकर के देना चाहते हैं, और वही अधिकारी हैं सारा विश्व प्राकृत और अप्राकृत, वैकुंठ सब उनके हाथ में, उनके अधिकार में, और वे पूर्ण प्रसन्न हृदय से प्रह्लाद महाराज को वर देना चाहते हैं। बार बार अपने बारे में बताते हैं कि मैं सबसे बड़ा दाता हूं, मुझसे भेंट करना बड़ा कठिन है, लेकिन मैं यहां पर उपस्थित हूं। अतः तुम इस पर विचार करके कैसा अवसर है, कौन व्यक्ति मेरे सामने प्रकट है, तो तुम्हारी जो भी इच्छा हो अभिमत उसको मांगो। वरम वृणीष्व, श्रेयस कामा, जो भी अपना हित चाहते हैं, जो भी श्रेय की कामना करते हैं, उन पुरुषों के लिए उनकी सर्वासाम आशीषाम सबके मनोरथ की मैं पूर्ति करता हूं, सबके मनोरथ का स्वामी हूं, पति हूं। जो भी मन में मनोरथ कर सकता है जीव, उसको मैं दे सकता हूं, क्योंकि सर्वासाम आशीषाम पति, समस्त वस्तुओं का स्वामी मैं हूं, मालिक मैं हूं। तो नारद जी कहते हैं इस प्रकार एवं प्रलोभमानों पे, इस प्रकार भगवान प्रलोभन दे रहे थे प्रहलाद महाराज को, कैसे वराह लोक प्रलोभने, वरों को, वरों की चर्चा करके जो लोक को, लोगों को प्रलोभित करते हैं, जिन वस्तुओं में प्राय लोग फंस जाते हैं, उन स्वर्गीय या ब्रह्म लोक आदि सब कुछ के भोगों को, वरों को देना चाहते थे और सामने उपस्थित। जरा विचार कीजिए, यदि कोई बहुत बड़ा ऑफिसर या स्वामी जैसे राष्ट्रपति या प्राइम मिनिस्टर किसी से कहने लगे मैं पूरा प्रसन्न हूं तुम पर और तुमको जो चाहिए वो मांगो, तो आदमी पहले कहेगा ठीक है रुकिए हमको लिस्ट बनाने दीजिए, तो क्या क्या मांगेगा, मनोरथ बहुत होता है, और जान जाए कि इस व्यक्ति का पूरा अधिकार है, पूरा रेलवे विभाग और कोई भी विभाग उसके अधिकार में है, तो पहले तो कहेगा हमको ऐसी व्यवस्था कीजिए कि हमको कभी भी टिकट कन्फर्म मिल जाए, है ना, और बढ़ तो बाद में मांगेगा। लेकिन ये संसार के भोग सब अनित्य हैं, भगवान से ये सब वस्तुएं नहीं मांगनी चाहिए। तो एकांतित्वात् भगवते, प्रहलाद महाराज भगवान के एकांतिक भक्त थे, बस एक में ही अंत था उनके मति का, एक भगवान में ही वे उनकी मति थी और कहीं नहीं। तो इसलिए तान न ऐच्छत, इन विषयों के प्रहलाद महाराज इच्छा तक नहीं किए, मांगना तो दूर की बात है। तान मैं छत्तान असुरोत्तम, असुरोत्तम श्री प्रहलाद इन विषयों की कभी कामना नहीं किए, इच्छा नहीं की। जिन वस्तुओं में, जिन भोगों में लोक प्रलोभन रहता है, सब लुब्ध रहते हैं, देवता भी सभी भोगों में ही हैं, लिप्त रहते हैं, लेकिन उन पदों को, उन भोगों को प्रहलाद महाराज बिल्कुल नहीं चाहे। और हमको किताब दीजिए जो प्रहलाद महाराज बोलते हैं, वो यहाँ है। इसमें तुमने दसवां अध्याय है, श्री प्रहलाद महाराज ने कहा, मां माम प्रलोभयत प्रत्या सप्तम कामे से तैर भय, हे प्रभो मेरा जन्म ऐसे वंश में हुआ है जिस वंश में लोग भोगों में ही रहते हैं, विषय भोग में, इंद्रियों के भोगों में, तो मैं तो जन्म से ही उन विषयों में आसक्त हूं। सक्तम भोगेशु, अतः मुझे ललचाइए मत, माम मा प्रलोभय, मुझको लालच मत दीजिए उन भोगों की चर्चा करके, मैं तो भोगों में हूं ही जन्म से, तो उसी में पुनः हमको मत जोतिए। माम मा प्रलोभय, हमको प्रलोभन मत दीजिए, मैं जन्म से ही विषयों में आसक्त हूं, उत्पत्ति से ही विषयों में आसक्त हूं। तत्संगात भीतर, संसार के इन विषयों से मैं बिल्कुल डरा हूं, उब गया हूं। तत्संग भीतर, तत्संग मतलब इन विषयों से मैं डरता हूं, बहुत डरा हूं, निर्वीण हूं, मैं उब गया हूं। और मुमुक्षु स्तम उपासता, मैं तो मुमुक्षु हूं, मैं इन भोगों से छूटने की अभिलाषा रखता हूं, छूट जाऊं। मुक्तुम इच्छु, मैं विषय भोगों से छूटने का इच्छुक हूं, मैं मुमुक्षु हूं, इसी के लिए मैं आपके चरणों के शरण में आया हूं। पाम उपास में तो मैं आपका आश्रय लिया हूं, तो मुझे भोगों का लालच मत दीजिए। मैं समझ रहा हूं कि आप क्यों मुझको विषय भोग में प्रेरित कर रहे हैं। भीत लक्षण जिज्ञासु, शुद्ध भक्त का लक्षण जानने के लिए आप मुझको विषय भोग में प्रेरित कर रहे हैं। अगर ये उद्देश्य नहीं होता तो आप करुणामय भगवान कैसे संसार के विषय को देने की बात कहें। तो यही एक ही उद्देश्य है। वास्तव में प्रहलाद महाराज के कहने का आशय है कि दो तरह के भक्त होते हैं, एक मुक्त और एक नित्य मुक्त और एक साधन मुक्त, जो साधना करके भक्ति करके मुक्त होते हैं तो वे साधन मुक्त कहे जाते हैं, और जो नित्य मुक्त है वैकुंठ में रहते हैं वे, तो कभी कभी भगवान अपने धाम से कुछ भक्तों को, नित्य भक्तों को, नित्य मुक्त भक्तों को इस जगत में जन्म देते हैं, और उनके व्यवहार उनके आचरण को फैलाते हैं, सिखाते हैं जगत को, कि लोग उसके देखा देखी देख करके सीखें भक्त का लक्षण। तो उसमें हम लोग विशेषण लगा लेते हैं शुद्ध भक्त, लेकिन भागवत में भक्त काफी है। भक्त का लक्षण जानने के लिए, फैलाने के लिए भगवान अपने भक्त को विषय भोगों की कामना में प्रेरित करते हैं। श्री प्रहलाद भगवान के नित्य पार्षद है, नित्य मुक्त, लेकिन उनका जन्म इस जगत में हुआ असुर वंश में, और भगवान इसलिए पूछ रहे हैं, वे जानते हैं कि ये निष्काम भक्त है, तो इस बात का वे प्रचार करना चाहते हैं। प्रहलाद को वर मांगने के लिए कहूंगा तो प्रहलाद कुछ भी नहीं मांगेगा मेरी सेवा के अलावा, तो इसी बात का वे प्रचार करना चाहते हैं, जिससे प्रहलाद का उदाहरण सुन करके पढ़ करके आगे के भक्त भी अपनी शुद्धि करेंगे, अब वो प्रहलाद जैसा बनना चाहेंगे। तो प्रहलाद महाराज भगवान के अभिप्राय को समझ रहे हैं, कहते हैं इसी के लिए, भक्त के लक्षण को जगत में फैलाने के लिए आप हमसे विषय भोग के लिए प्रेरणा दे रहे हैं। भृत लक्षण जिज्ञासु, जिज्ञासु मतलब जानने के लिए, फैलाने के लिए। अन्यथा तेखिल गुरु, अगर यह बात नहीं होती तो भगवान कैसे ऐसे करते, जो विषय भोग बंधन करने वाले हैं, अज्ञान में डालने वाले हैं, उन विषयों को देने के लिए क्यों कहते हैं? वे जगत गुरु हैं, सबके परम हितैषी हैं। जगत गुरु, गुरु मतलब हितोपदेष्टा, जो हित का उपदेश करे, तो सबके गुरु होते हुए भी, सबके हितोपदेष्टा होकर के फिर ये विषय भोग की बात क्यों कहेंगे? केवल शुद्ध भक्त का लक्षण जगत में बताने के लिए, प्रचार करने के लिए आपने ऐसा कहा। प्रहलाद महाराज अपने को शुद्ध भक्त नहीं कह रहे हैं, क्योंकि शुद्ध भक्त, निष्काम भक्त कभी भी सोचता भी नहीं है कि मैं शुद्ध भक्त हूं। तो भक्त लक्षण जिज्ञासु, भक्त का लक्षण, जो जानते हैं कि श्री भगवान इसी के लिए कह रहे हैं वर मांगने के लिए। जो भक्त है या जो व्यक्ति कामना रख करके स्वामी की सेवा करता है, तो वह वास्तव में भृत्य नहीं है, भक्त नहीं। साफ कह रहे हैं प्रहलाद महाराज कि हम निष्काम भक्त हैं और आप स्वामी निरपेक्ष हैं, आप परिपूर्ण हैं, आपको कोई आवश्यकता नहीं है कि कोई सेवक मेरी सेवा करे, आप सब तरह से पूर्ण हैं, किसी की अपेक्षा नहीं रखते हैं, और मैं भी आपका निष्काम भक्त हूं। मुझे यह कामना नहीं है कि मैं सेवा करूं जो बदले में कुछ वेतन दे, कुछ करे। चक्रवर्ती पाजी कहते हैं कि ये तो वणिक है, प्रहलाद महाराज कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति सेवा इसलिए कर रहा है स्वामी की कि स्वामी हमको पगार देगा, वेतन देगा, तो वह सेवक नहीं है, वह तो वणिक है, वह तो व्यापारी है, बनिया है, थोड़ा सा पूंजी लगा करके और बहुत पाना चाहता है। जैसे भगवान ने गीता में कहा है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो पत्र पुष्प फल जल मुझको अर्पण करता है तो मैं उसको बहुत संपत्ति देता हूं, बहुत ऐश्वर्य देता हूं। यह सुन करके यदि कोई भक्ति कर रहा है कि भगवान को पत्ता चढ़ा देने से वैकुंठ देते हैं, तो इसलिए किया जाए, कुछ फल चढ़ा दिया, कुछ फूल चढ़ा दिया, कुछ पानी, और आकांक्षा करता है कि ये विश्व के स्वामी हैं, हमको देंगे, स्वर्ग देंगे या भोग देंगे तो वह भक्त नहीं है, वह वणिक है, बनिया है। भगवान को कुछ दे करके और बहुत कामना करता है, और स्वामी भी वह वास्तव में स्वामी नहीं है कि सेवा करा करके कुछ देना चाहता है। तो मैं आपका निष्काम भक्त हूं और आप मेरे अनपेक्ष स्वामी हैं। इस जगत में जैसे राजा और राजा के सेवक होते हैं तो दोनों दोनों पर डिपेंड रहते हैं। वो इसलिए सेवा करता है कि मुझको महीना देंगे, और वो सेवा लेता है, स्वीकार करता है, क्योंकि वो आश्रित है तो सदा चाहता है कि ये मेरी सेवा करने वाला अभाव में रहे और हम पर डिपेंड रहे, सेवा करके देता है, सेवा करा करके। तो चाहता है कि हमारी सेवा होती रहे, मैं स्वामी बना रहूं। लेकिन श्री भगवान ऐसे नहीं है। प्रह्लाद महाराज कहते हैं आप अनपेक्ष स्वामी हैं, आप सब तरह से परिपूर्ण हैं, आपको कभी ये भान नहीं होता है कि मैं सेवा लूं। कोई सेवा करेगा तब भगवान सुखी होंगे, ऐसी बात नहीं। इसको अनपेक्ष स्वामी कहते। तो आप अनपेक्ष स्वामी हैं और मैं निष्काम भक्त हूं। अतः आपने जो ये मांगने के लिए कहा तो मैं समझ रहा हूं आप भक्त के लक्षण को जगत में जाहिर करना चाहते हैं। फिर भी भगवान ने कहा प्रह्लाद तुम मुझसे मांगो, मेरा ऐश्वर्य किस काम आएगा, मैं किस लिए जगत का ईश्वर हूं, मैं तुम पर प्रसन्न हूं, तुम मांगो, कुछ मांगो, यदि नहीं मांगोगे तो इसमें मेरी बेइज्जती है। तो श्री प्रह्लाद महाराज ने कहा यदि आप देना ही चाहते हैं, यदि ददासी में कामा वरांश तुम वरदर्शन, हे वरदानियों में सर्वश्रेष्ठ, आपकी अभिलाषा इच्छा है देने की, तो मुझे ये वर दीजिए, कामान हृदय सुन दो हम भौतस्तु वृणे वरम, मेरे हृदय में कामनाओं का अंकुर भी न उगे। भगवान की बात रखने के लिए प्रह्लाद महाराज कहते हैं यदि दास से सी मैं कामान वरांश तुम वरदर्शन, कामानम हृदय संरोहम भौतस्तु वृणे वरम, यही वर मांग रहा हूं। कभी हमारे हृदय में आपकी सेवा के अलावा कोई कामना का उदय हो ही नहीं, कोई भौतिक वस्तु की इच्छा कभी हो ही नहीं, उदित ही ना हो, थोड़ी भी इच्छा ना हो कभी। इसको अंकुर कहते हैं। जैसे वृक्ष पहले बीज के रूप में होता है, बीज से अंकुर उगता है, तो अंकुर भी ना उगने पावे। इसका अर्थ है कि हमारे हृदय में जो भौतिक बीज है, विषयों के विषयों विषय भोग का बीज, उसे ही जला दीजिए। न धनम न जन्म न सुंदर इन कविताओं वा जगदीश काम, मम जन्मनि सूर्य भवता भक्ति रहे तो कितु। ये भगवान चैतन्य महाप्रभु मानते हैं। मानते क्या है, वे इसी श्लोक के द्वारा हमें शिक्षा दे रहे हैं। न धनम न जनम और न अनुयायी, धन नहीं चाहिए और बहुत अनुयायी नहीं चाहिए, बहुत चेला चाटी नहीं चाहिए। इस संसार में इसी की कामना सबको रहती है। हमारे बहुत से सेवक हों, अनुगामी हों और हमारा धन बढ़ता जाए। यहां तक कि विरक्तों में भी धन की कामना बहुत रहती है। आप देखते ही हैं सब जगह विरक्त कि और हमारे लिए बहुत सुंदर गाड़ी हो जाए, बहुत सुंदर महल हो जाए, और प्रतिदिन एक कामना रहती है। कितना भी धन है लेकिन धन की कामना बढ़ती ही जाती है। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं न धनम, धन नहीं चाहिए हमें, अनुयायी नहीं चाहिए और सुंदरी सुंदर स्त्री नहीं चाहिए। इस जगत में विषय भोग के लिए सुंदरी स्त्री का संग्रह करते हैं लोग, चाहते हैं कि वो हमें मिले, लेकिन भगवान कहते हैं ये हमें नहीं चाहिए। और कविता पांडित्य नहीं चाहिए। विद्वता नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए तुमको? मम जन्मनी जन्मनी, मैं जब जहां भी जन्म लू प्रत्येक जन्म में, और चाहे पक्षी बनू या पशु अथवा आदमी, भावता भक्ति रहे तो की तो आप में अहेतु की निष्काम भक्ति हो। भक्ति करके मैं कुछ चाहूं नहीं, केवल भक्ति भक्ति के लिए, भक्ति के बदले और कोई वस्तु कामना नहीं, किसी हेतु से आपकी सेवा करूं ऐसा नहीं, केवल सेवा करूं, भक्ति हो। प्रायः मनुष्यों के हृदय में ये इच्छा रहती है, हम भक्त बने हैं तो हमको भगवान दें, हम हमारी विपत्ति हर लें, हमको धन दें, हमको सुख दें, आराम दें, और इस जन्म के बाद मुझे स्वर्ग दें, अच्छे परिवार में जन्म दें। भक्ति की कामना प्रायः नहीं होती है, विषय भोगों की ही कामना रहती है, भले व्यक्ति कहे या ना कहे। और कामना हृदय में उत्पन्न होती है। तो श्री प्रह्लाद महाराज तो भगवान के उपस्थिति में बात कर रहे हैं, भगवान सामने हैं और प्रसन्न है, तो फिर भी कहते हैं ये सब चीज नहीं चाहिए हमें। अगर देना ही है, दिए बिना आपको नहीं रहा जाता है, देने में ही आपका सम्मान है, तो ये दीजिए कि हमारे हृदय में कामनाओं का बीज ही अंकुरित ना हो, बीज जला दीजिए। तो विषय भोग की कामना बहुत भारी अज्ञान के कारण है, हम अपना संबंध कृष्ण के साथ भूल जाते हैं और संसार को ही सत्य मान करके यहाँ भोग भोगना चाहते हैं। इन भोगों के विषय में भगवान स्वयं कहते हैं भगवद गीता में, ये ही संस्पर्श जा भोगा दुख जो नए ये होते, जो इंद्रियों के भोग हैं इस जग प्राकृतिक जगत में, भौतिक जगत में संस्पर्शजा भोगा दुख योनिया, ये दुख की योनिया है, कारण है, तो अनेक दुख उत्पन्न करते हैं, दुख की मां है। अगर अकेले दुख रहते तो कोई बात नहीं, लेकिन ये तो दुख की योनि है, कारण है, अनेक दुख पैदा होता है इन भोगों से। और यदि कोई व्यक्ति स्त्री में आसक्त है तो उसे अनेक दुख भोगने पड़ते हैं। अनेक प्रकार की चिंता, अनेक प्रकार के रोग, तो ये दुख योनिया यवते, दुख की योनियां हैं, आद्यंतमंत। और ये भोग कैसे हैं, उनका प्रारंभ होता है आदि और अंत, इसीलिए न तेसु रमते बुधा, इन भोगों में बुधा विद्वान व्यक्ति न रमते, समझदार व्यक्ति नहीं रमता है, मूर्ख लोग रमते हैं। संस्पर्शज भोग सब संसार का भोग दुखद है और यह नित्य है, आद्यंतवंत, पहले नहीं रहते हैं, शुरू कुछ होता है और कुछ ही समय के बाद उनका अंत हो जाता है। इन भोगों में, सांसारिक विषयों में बुद्धिमान व्यक्ति नहीं रमता है। ये देखा जाता है जितने भी बुद्धिमान लोग हैं, वे अपने चित्त को संयमित करके भगवान का चिंतन करते हैं या भगवान का जप करते हैं, नाम का भगवान के बारे में पढ़ते हैं, एकांत में ज्यादा से ज्यादा रहते हैं। उपद्रव से बच करके, डिस्टर्बेंस से बच करके भगवान का स्मरण करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण, वही प्रभु जो भोगों को दुखद कह रहे हैं, प्रहलाद महाराज को प्रेरित कर रहे हैं कि हमसे मांगो, तो प्रहलाद महाराज समझ रहे हैं कि ये भक्त के लक्षण को जगत में फैलाने के लिए ये योजना बना करके बात कह रहे हैं, अन्यथा भगवान तो जगत के सबसे बड़े हितैषी हैं। यही हितैषिता है कि भगवान इस जगत को बना करके और यहाँ भोगों की सारी व्यवस्था है करके कहते हैं सावधान, ये दुख योनिया, दुख की योनिया है। जैसे सरकार हमको बिजली देती है लेकिन कहीं कहीं लिखी रहती डेंजर, खतरा है, कटा हुआ मस्तक दिखाती है सरकार, तो यहां मत छूना नहीं तो मर जाओगे। तो उसको बुद्धिमान व्यक्ति, पढ़ा लिखा व्यक्ति पढ़ लेता है, समझ लेता है, तो छूता नहीं है, लेकिन मूर्ख आदमी छू करके देखेगा क्या खतरा है, किसी के लिखने से क्या होगा, ये भगवद गीता छापने से क्या होगा। वो कह दिए, भगवान कह दिए भोगों में दुख है, लेकिन क्या दुख है मैं देखूंगा। तो बिजली को छूने जाता है तो इसके बाद वो अनुभव बता भी नहीं सकता है। और दूसरे का अनुभव काम आता है, पोस्टमार्टम होने लगता है, और छूने गया टेस्ट करने, लेकिन बताया भी नहीं कि कैसा लगा, एक ही करंट में, एक ही शॉर्ट में वो समाप्त हो गए। तो यह दशा है भोगों की। और स्वयं जगतपति भगवान गीता में कह रहे हैं यही संस्पर्शजा भोगा, जो भी संसार के भोग हैं इंद्रियों के, दुख जो न एवते, दुख योनि है, बहुत दुख उत्पन्न होता है, इसलिए इसमें मत रमो। और दृष्टांत भी देते हैं, विद्वान लोग इसमें नहीं रमते हैं, वे गीता पढ़ करके सावधान हो जाते हैं। तो इस तरह ये प्रहलाद महाराज की कथा शुद्ध भक्ति का निदर्शन है, ऐसे भक्त को होना चाहिए कि स्वयं भगवान भी कहे मांगने के लिए तो नहीं मांगो, विषय भोग नहीं मांगना चाहिए, फिर दूसरों से क्या मांगे, दूसरे से मांगते हमको थोड़ा सा दे दो, कुछ पैसा दे दो, जरूरत है, वो भी मिलता नहीं है। स्वयं भगवान से भी नहीं मांगना है, इतना अभिमान होना चाहिए भक्त को, भगवान बार बार अपनी बड़ाई कर रहे हैं कि मैं समस्त मनोरथों का स्वामी हूं, आशीषां पते, और मैं तुम पर प्रसन्न हूं, मेरे को जानने के लिए, पाने के लिए धीर लोग प्रयास करते हैं, मैं समस्त कामनाओं को दे सकता हूं, भगवान कुछ भी कहे आप दे सकते हैं ठीक है, लेकिन हमको दीजिए कि हमको कोई कामना ही ना हो। तो भगवान ही हमारे इस काम बीज को खत्म करेंगे, जो हृदय में अनादि काल से वासना है, विषय भोगों की वासना, यह संसार के भोगों की वासना है, इसको भगवान ही समाप्त करेंगे, यही प्रहलाद महाराज ने मांगा। और यह भी वर भगवान के आग्रह करने पर भी मांगे, तो यही शिक्षा है प्रहलाद महाराज। विषय भोग एक तो चाहने पर मिलते नहीं, उनकी प्राप्ति हमेशा अधूरी होती है, कोई भी भोग हमेशा अधूरा मिलता है जीव को इस जगत में, पूरा कभी नहीं होता है। यही स्वभाव है विषयों का, भोगों का, वो कभी पूरा हो ही नहीं सकते। जैसे कोई व्यक्ति गृहहीन है, वो चाहता है कि हमको अच्छा घर मिले, मैं खरीद लूंगा, अगर वो खरीद लिया भी तो उसकी इच्छा पूरी हो गई ऐसा नहीं, अब घर में फिर फर्नीचर चाहिए, और आजकल तो टीवी चाहिए वो रखेगा, और अनेक प्रकार का अभाव बना रहता है, ये भोग कभी पूरे नहीं होते। गृह भी एक भोग ही है, कार भी एक भोग है, तो कार किसी के पास हो गई तो भी पूरा नहीं हो सकता है, उसमें भी अनेक कमियां रह ही जाती हैं। सुविधा हो गई चलने की, लेकिन गर्मी के दिन में अब उसमें एसी चाहिए, तो भोग कम ही रहते, पूरा होते ही नहीं है, यही भोगों का स्वरूप है। व्यक्ति सोचता है अब पूरा हो जाएगा, अब पूरा हो जाएगा, लेकिन जीवन पूरा हो जाता है यही सब काम करते हुए, उद्यम करते हुए, लेकिन कभी भी विषय भोग पूरा नहीं होता। शरीर बदल जाता है, फिर दूसरे शरीर में, सूक्ष्म शरीर में वही कामनाएं रहती हैं, और कामनाएं बाकी रहती है, इसलिए देह देती है माया, फिर देह मिलता है और उस देह में भी कामनाएं, और कामना के अनुसार कर्म, अपने कामना की पूर्ति के लिए जीव कर्म करता रहता है। छोटे छोटे जीव भी कर्म करते हैं, जैसे चूहा, चूहा कितना कर्म करता है, सो जाते हैं सब लोग और रात में घर बनाता है और घर में संग्रह करता है, यहां से अनाज ढो करके आलू लेकर के जमा करता है, जमा करता ही रहता है, और वहीं पर सांप आ जाता है, वो सांप ये विचार नहीं करता है कि चूहा महाशय का मनोरथ पूरा हो गया, तो पूरा हो चाहे न हो, वो उस घर के मालिक को खा लेता है सांप और चल लेता है। तो इसी तरह से हमारा मनोरथ कभी पूरा नहीं होगा, हमेशा कमी रहेगी, और काल अचानक हमें ले देगा। जैसे सांप विचार नहीं करता है कि चूहा का मनोरथ पूरा हुआ है नहीं, उसको उससे क्या मतलब है, उसको तो भोजन से मतलब है। तो ऐसे ही ये प्रचंड काल कभी विचार नहीं करता कि इसकी इच्छा पूरी हुई या नहीं, वो चाहे राष्ट्रपति हो या एक चौकीदार हो, सभी कामना में है, और बुढ़ापा आ जाती है, काल आ जाता है अकस्मात, और जो कामना बाकी रह गई उसके लिए फिर देह लेना पड़ता है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि इन समस्याओं से गुजरना पड़ता है। तो ये कामनाएं यही संसार बीज है, प्रहलाद महाराज कहते हैं, जन्म मरण का कारण है एक कामना है, इसीलिए कामनाओं की निवृत्ति चाहते हैं, भगवान से कहते हैं कि हमारे हृदय से कामनाओं को जला दीजिए, कामनाओं का अंकुर भी न उगे। यदि कोई व्यक्ति सुखी होना चाहता है वास्तव में, तो उसे इन कामनाओं से मुक्त होना पड़ेगा। कामना के रहते हुए कभी हृदय में शीतलता नहीं आएगी, जलता रहेगा जीव, प्रत्येक जीव इसी कामना से जल रहा है। अब छोटे छोटे से जैसे चींटी है, उसको कौन फिक्र है, लेकिन मनुष्य रात में सो जाते हैं और वो लाइन लगा करके अपना दम सामान ढोती रहती है, निरंतर काम में है, कितना भोजन चाहिए, थोड़ा सा चाहिए, चीनी का एक कण है, लेकिन उसी के लिए अब भोजन जुटाने में जुटी है। जंगल में ऐसा होता है, चींटी जुटाती है सांवा बिल में, और उसके जमा किए हुए भोजन को, गोदाम को या क्या कहते हैं, वो जो जमा करते हैं अनाज को, नहीं वो अनाज को इकट्ठा करता, तो वो अभी काम चींटी का ही है ना, चींटी इतना परिश्रम करके जुटाती है, उसको भालू खा जाता है। तो यही हालत मनुष्यों की है, 24 घंटा काम काम काम, और 24 घंटा समय मिला है किसके लिए, और नाम जपने के लिए भगवान का, भागवत पढ़ने के लिए, गीता पढ़ने के लिए, लेकिन उसके लिए टाइम नहीं है और केवल देह के लिए काम करना है, काम करते रहते हैं, काम करते करते भोग का उपकरण जुटाते जुटाते मर जाते हैं, उसे कोई लाभ नहीं, लेकिन उसी में लगे हुए हैं। और जो परम लाभ है जीवन का, उससे इतना लापरवाह हो गए। कभी कभी उपदेश सुन करके ज्ञान होता है तब सोचते, अच्छा वो भी जरूरी है, या भगवान का स्मरण भी जरूरी है, या नाम जप भी जरूरी है, ठीक है कर लेंगे, लेकिन अभी तो टाइम नहीं मिलता है। तो मिलेगा टाइम तुमको खूब अच्छा से, और काल भगवान वो सब समय देते हैं। जिस समय शरीर की शक्ति चली जाएगी, किसी रोग से ग्रस्त होंगे, जब बुढ़ापा आएगी तब उस समय जप करेंगे, पर उस समय रोते हुए जप करेंगे, हरे कृष्णा हरे जप तो करेंगे ही, लेकिन बड़ी कठिनाई से, और अभी जवानी में समय नहीं है। ये बहुत भारी मूर्खता है मनुष्यों की। जल्दी करना चाहिए, भक्ति करनी है तो भक्ति परम आवश्यक चीज है, वो उसको पहले लाइन में रखना चाहिए, फ्रंट लाइन में, वही काम पहले करना है और काम बाद में देखा जाएगा। और इतना काम करने के बाद, इतना भोग जुटाने के बाद, जब कोई लाभ ही नहीं है तब क्यों करें? चार समस्या है, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, जन्म मृत्यु, और जन्म और मृत्यु के बीच में रोग और बुढ़ापा, ये चार समस्याएं ऐसी हैं जो जीवन में होंगी ही, होती हैं, इसी से हमें मुक्त होना है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, एक बार एक कथा है भगवान बुद्ध के विषय में। भगवान बुद्ध का नाम सिद्धार्थ था बचपन में, तो सिद्धार्थ एक राजा के पुत्र थे, उनका नाम सुदोधन था। तो राजा सुदोधन ने एक आज्ञा दिया था अपने नगर में कि हमारा पुत्र कभी भी कोई गलत दृश्य न देखे, दुखमय दृश्य न देखे, ये आनंद में रहे और सुख भोग करे। तो किशोर अवस्था आने के बाद ही उन्होंने विवाह कर दिया सुदोधन का। लेकिन एक दिन इच्छा हुई सिद्धार्थ की कि मैं नगर भ्रमण करना चाहता हूं, देखना चाहता हूं। तो राजा की स्पेशल आज्ञा हुई, कोई भी भिखमंगा न आवे रास्ते में, कोई लंगड़ा लूढ़ा नहीं, रोगी नहीं, कोई बूढ़ा नहीं, स्पेशल आज्ञा हुई थी। नगर को सजाया गया, साफ सुथरा किया गया, और जो लूढ़े लंगड़े थे, अपाहिज थे, उनको उठा उठा करके अलग रखा गया। सरकारी कर्मचारी ऐसा किए, यह दृश्य हमने देखा है एक बार वृंदावन में, जब इंदिरा गांधी जी थी, तो उस समय एक दिन आज्ञा हुई और नगर पालिका के द्वारा, मथुरा की नगर पालिका, उसने कहा जितने भी कोढ़ी हैं, लंगड़े हैं, अंधे हैं, उनको जमुना जी के घाट से उठा करके, हटा करके कहीं अलक्षित रख दिया जाए, तो सबको उठा उठाकर पुलिस ले जा रही थी। तो उसमें हम लोग भी थे, हम और एक भक्त नेपाल के थे, हमारे गुरु भाई गेरुआ कपड़ा में थे, तो पुलिस पकड़ी, तुम लोग कहां घूम रहे हो? तो हम लोगों ने कहा कि हम लोग यहां मंदिर में रहते हैं। उस समय इस्कॉन प्रसिद्ध नहीं था, केवल इतनी ही चर्चा थी कि अंग्रेजों ने एक मंदिर बनाया है। तो हमने कहा कि हम अंग्रेज मंदिर में रहते हैं, तो तुम लोग मंदिर में सीधे जाओ, इधर उधर मत घूमो। हम लोग मंदिर में चले गए और जो लवारिस साधु थे उनको पकड़ पकड़ कर ले गए। फिर बाद में छोड़ दिए, उस दिन के बाद सब जहां तहां किसी घाट पर इधर उधर बैठ गए। तो इसी तरह सुदोधन महाराज ने आज्ञा दिया था अपने नगर में किसी भिखमंगे को घूमने नहीं देना है, जिससे सिद्धार्थ को कोई भी अशुभ दृश्य देखने को न मिले। निकले सारथी के साथ रथ पर चढ़ करके घूमने नगर। तब तक लाठी टेकता हुआ एक बूढ़ा आ रहा, तो सिद्धार्थ पूछते हैं सारथी से, ये कौन है और इनको क्यों ऐसी दशा हुई है? तो सारथी ने कहा, हे राजकुमार, यही तो जीवन है, एक दिन सबको बूढ़ा होना पड़ेगा। तो सिद्धार्थ पूछता है, उसकी अपनी पत्नी में बहुत आसक्ति थी जसोधरा में, वो पूछता है क्या मेरी पत्नी भी वृद्ध हो जाएगी? तो सारथी ने कहा, यही नियम है, होना ही है सबको। तब सिद्धार्थ को वैराग्य चढ़ा और बहुत सावधानी बरती गई थी, कोई अशुभ दृश्य न आए। लेकिन इसके बाद एक रोगी मिला जो ईश्वर की व्यवस्था को कौन टाल सकता है। तो सिद्धार्थ पूछते हैं, ये कौन व्यक्ति है और इस तरह से क्यों हुआ है? रोगी कभी गिर रहा था, कोई कठिनाई से खड़ा हो रहा था, ये क्यों हुआ है? क्यों हुआ है, ये कोई इच्छा से थोड़े हुआ है? और सारथी ने बताया कि यही नियम है, ये होना ही है। ये रोगी कभी कभी शरीर में रोग हो जाता है, तो ये रोग के कारण दशा है। तो क्या हमारी पत्नी को भी रोग होगा? हाँ, सभी को हो सकता है, कोई अपवाद नहीं है। इसके बाद उसी दिन की घटना है, आगे जा रहे थे दूसरे मोहल्ला में, तब तक घर से राम नाम सत्य है बोलते हैं कुछ लोग निकल, एक शॉल लेकर के जा रहे हैं। तो सिद्धार्थ जिज्ञासु हुए, ये क्या हो गया है इस व्यक्ति? सारथी ने बताया, इसको मृत्यु कहते हैं, एक दिन सबको मरना पड़ता है। बहुत सावधानी बरती गई थी और उस दिन रोगी, बूढ़ा और मृतक मिल ही गए। इससे सिद्धार्थ को अर्थात भगवान बुद्ध को बहुत हृदय में धक्का लगा। उन्होंने विचार किया कि संसार दुखमय है, तो वे अपनी राजधानी छोड़ करके गया जी में चले गए। गया के आसपास जो जंगल था वहां चले गए और जंगल में वे ध्यान करने लगे, मन को समाहित करने लगे। एक बोध गया नामक स्थान है, तो वहां एक बरगद के वृक्ष के नीचे वो ध्यान कर रहे हैं। ध्यान करते करते उनको कुछ अनुभूति हुई, उसको लोग कहते हैं कि उन्हें ज्ञान हुआ वहां, इसी के कारण उसको बोध गया कहते हैं। बोध हुआ, बोधि वृक्ष वहां है, तो उन्होंने भी कहा है कि असली समस्या है जन्म मृत्यु जरा और व्याधि। इससे मुक्त होने के लिए प्रत्येक मनुष्य को प्रयास करना चाहिए और प्रयास इसी जीवन में करेंगे। ये शरीर छूट जाएगा तो उसके बाद कुछ नहीं होगा। तो हम लोगों को भगवान ने मनुष्य शरीर दिया है अपने को इस दुख से मुक्त करने के लिए, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इसके रिपीटेशन से हम अपने को मुक्त कर लें, यही बुद्धिमानी है। ये शरीर तो जाएगा, लेकिन इसी शरीर से अमरत्व की प्राप्ति करनी है, अमर जीवन, शाश्वत जीवन। यह शरीर क्षणभंगुर है, लेकिन कितना उपादेय है, इसी शरीर से हम शाश्वत जीवन पाएंगे। तो इस शरीर को अब सजाने में या भोग भोगने में नहीं लगाना चाहिए। यह तन कर फल विषय न भाई, भगवान राम कहते हैं। ये शरीर से विषय भोग कमाना नहीं चाहिए, इससे तो भगवान की भक्ति करनी चाहिए। इसके लिए बहुत जरूरी है प्रहलाद जैसे शुद्ध भक्त की कथा सुनना। और यह शरीर बीत जाएगा तो पता नहीं कब मुक्ति मिलेगी। दूसरे शरीर में जाएंगे, दूसरे शरीर तो किसी काम के नहीं है, भजन के मानने में किसी काम के नहीं। तो चाहे गाय का शरीर हो, चाहे हाथी का शरीर हो, या बकरी का, या कीड़ा मकोड़ा, उसमें क्या करेंगे, कहां से जप करेंगे, माला कैसे पकड़ेंगे उस शरीर में। किसी बकरी को दीजिए माला जपने के लिए तो उसको खा जाएगी, चबा जाएगी, लेकिन जपेगी नहीं। किसी बैल को दीजिए कि तुम जप आए, बुलवाई बोलो हरे कृष्ण, वो नहीं बोल पाएगा। उसका शरीर बलवान है, दूसरे काम करता है, लेकिन घोड़ा, हाथी, ये सब ईश्वर का ज्ञान नहीं रखते हैं। भगवान के बारे में वो सुनेंगे ही नहीं, सुन करके समझेंगे नहीं। तो यह मनुष्य शरीर इतना गुणों से भरा है, इसमें भगवान का जप कर सकते हैं, भगवान के लिए मृदंग बजा सकते हैं, करताल बजा सकते हैं, भगवान की आरती कर सकते हैं, भगवान को प्रणाम कर सकते हैं। एक बच्चा भी सीख जाता है, इस मानव शरीर में इतनी विशेषता है। तो इसका उपयोग कर लेना चाहिए। तो प्रश्न होगा कि कब करें, जब शरीर की सही अवस्था है, कौमार अवस्था है। प्रहलाद महाराज कहते हैं जब ही बच्चा है तब ही कर लेना चाहिए। जवान होने पर अनेक बाधाएं आएगी, अनेक चिंता, अनेक कामनाएं घेर लेंगी, उस समय नहीं कर पाएंगे, इसी को पहले उन्होंने बताया है छठे अध्याय में। कैसे करोगे भजन, भगवान प्रहलाद महाराज कहते हैं, कथम प्रियाया अनुकंपिताया संगम रहस्यम रुचिरांश मंत्र। यदि खेलने में खाने में समय बर्बाद कर दिए तो जवानी में बहुत बाधा है। पहले तो घर में प्रिया आएगी, तो प्रिया पत्नी, तो उसको कैसे छोड़ पाओगे तुम, प्रहलाद जी सिखाते हैं। जो अपना घर, अपने माता पिता के घर छोड़ करके तुम्हारे घर आएगी, तो तुम उसका मोह कैसे छोड़ पाओगे। व्यक्ति सोचता है कि यह मुझको सेविका मिली है फ्री सेवा करने वाली, तो चाहे जो कुछ भी हो इसके लिए हमें सब कुछ करना है, तो भजन पर ध्यान नहीं देगा और रहते रहते फिर माता पिता बूढ़े हो जाएंगे, उनकी ममता। सोचेगा पिताजी को छोड़कर के कैसे जाऊं, ठीक है वृंदावन में जाना या भगवान की भक्ति करना, लेकिन इनको छोड़कर कैसे जाऊं, असली तीर्थ माता पिता है। उस समय समझेगा और इनको छोड़ना ठीक नहीं है, तो स्त्री को छोड़ना ठीक नहीं है और छोटे छोटे बच्चे हो तो हम पर आश्रित हैं, तो उनको भी नहीं छोड़ेंगे और माता पिता को भी नहीं। अगर यह कहा जाए कि ठीक है छोड़िए किसी को नहीं, घर पर ही भगवान का जप कीजिए, तब भी व्यक्ति नहीं कर पाता। तो जीवन में दो ही गति होती है, या तो हम बंधन में रहें या मुक्त हो जाएं। मुक्त हो करके रहेंगे अच्छा है, हमारा बंधन जन्म मरण का बंधन समाप्त हो जाए, इसके लिए प्रयास करना होगा। और नहीं तो कम से कम हम बंधन में रहें लेकिन हमारी उच्च गति होनी चाहिए। हम जन्म लें ठीक है, लेकिन स्वर्ग में जन्म लें, ऊंचा लोक मिले, अच्छा परिवार मिले, ये गति। और ये गति नहीं होगी तो नरक, नरक में जाना होगा। बहुत भीषण दुख होता है नरक में, वहां दुख की स्पेशल व्यवस्था है। दुख देने के लिए पापियों को ले जाते हैं जमराज के दूत और मारते हुए ले जाते हैं, कोई स्वागत करते हुए नहीं, बीच में कहीं भी प्याऊ नहीं है। नरक के रास्ते में प्याऊ नहीं है, कोई वृक्ष की छाया नहीं है, सूर्य की प्रचंड गर्मी और बगल में दमानल लगा रहता है, रास्ते में गर्म हवा की व्यवस्था है, उसी तप्त बालुका में, और पथ जो है वो केवल बालू बालू है, कोई चिकना रोड नहीं, तप्त बालू, और उसे तप्त बालू का पर चलना पड़ता है नरक में जाने के लिए। और पहुंचने पर जो स्वागत होगा वो तो अलग, और वहां पहुंचने पर जलाना, काटना, मारना, पीटना, वो सब अलग अलग नरकों में व्यवस्था है। तो या तो नरक में जाना पड़ेगा, तो बेटर है कि स्वर्ग जाए, लेकिन स्वर्ग अपने हाथ में है नहीं, उसके लिए तो बहुत धर्म करना पड़ता है। बहुत कम परिश्रम से हम मुक्त हो जाएंगे, भगवान के धाम में जाएंगे। और यदि मुक्त नहीं हुए तो फिर 84 लाख योनियों में जन्म होगा, और कब तक जन्म मरण में पड़े रहेंगे कोई ठीक नहीं, कितना समय तक रहेंगे जन्म मृत्यु में, मरते रहेंगे, जन्म लेते रहेंगे, दुख में रहेंगे, अकल्पनीय काल तक, कोई निश्चित नहीं कर सकता कब तक ये हमारा जन्म मरण चलेगा। जन्म लेंगे, फिर मरेंगे, फिर जन्म, अब जन्मत मरत दुसह दुख होई, जन्मने मरने में अपार दुख होता है। तो मनुष्य शरीर इसके लिए भगवान ने दिया है कि इसमें हम उपाय करें मुक्त होने के लिए, भगवान के धाम में जाने के लिए, जहां कोई दुख नहीं है, जहां जन्म नहीं है, जहां मृत्यु नहीं है। और यह भी सुविधा है, वहां जाने के बाद फिर इस घोर दुखमय जगत में नहीं आना पड़ता। जद गत्वा न निवर्तन्ते, स्वयं भगवान जो उस लोक के मालिक हैं वही बोल रहे हैं कि वहां जाने के बाद किसी को धक्का धक्का कर निकाला नहीं जाता है। जद गत्वा न निवर्तन्ते, आखिर हम लोग स्थान खोजते ही रहते हैं, इसीलिए तो लोग चेंज करते हैं अपने घर। कोई हरिद्वार में है तो यहां से दिल्ली जाना चाहता है, दिल्ली वाले अमेरिका जाना चाहते हैं, इंग्लैंड जाना चाहते हैं, और वहां जो है वे ऑस्ट्रेलिया में जाना चाहते हैं, और अमेरिका वाले सब कोशिश कर रहे हैं कि हम चंद्रमा पर चले जाएं। पर भगवान कहते हैं आ ब्रह्म भूना लोका पुनरावर्तन अर्जुन, ब्रह्मा जी के लोक तक, सत्य लोक तक जितने लोक हैं वहां से पुनरावर्तन होता है, फिर जन्म लेना पड़ता है, मरना पड़ता है। तो चंद्रमा पर कोई चला भी जाए तो मरना तो पड़ेगा ही, ऐसे वो गए नहीं हैं, झूठ बोलते हैं। एक प्रमाण एक व्यक्ति ने निकाला है कि वे झंडा गाड़ करके आए, वे दिखाते हैं फोटो लिए, झंडा फहरा रहा है। तो ये वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि चंद्र लोक में हवा नहीं है, पर चंद्र लोक में झंडा गाड़े हैं तो दिखा रहे हैं कि हवा के झोंके से झंडा फहरा रहा है। तो उसने प्रश्न किया कि ये झंडा चंद्रमा पर नहीं गाड़ा गया है, तो झंडा कहीं पृथ्वी पर गाड़ करके रेगिस्तान में कहीं नहीं, और फोटो खींच लिए हैं और उसी को दिखाते हैं, हम चंद्र लोक से फोटो खींच करके लाए। ये बहुत झूठा चलता है, इंटरनेशनल असत्य बहुत प्रसिद्ध है, बहुत धोखा दे रहे हैं, जनता को मूर्ख बना रहे हैं वैज्ञानिकों। श्रील प्रभुपाद इस विषय में कहते हैं, बहुत कहे हैं, कभी नहीं गए हैं, जाने का डिंग हाँकते हैं, मैं जाऊंगा, मैं गया, मैं जाकर के लौट आया, लेकिन क्या है स्थिति, वहां जीवन संभव नहीं है। जब जीवन संभव नहीं है तो वहीं क्यों जाना चाहते हो, मरने के लिए? तभी जीने की व्यवस्था करेंगे, उसके लिए करोड़ों करोड़ डॉलर खर्च कर रहे हैं। और कुछ लोग तो यहां तक कहते हैं वहां हम जमीन प्लॉटिंग करेंगे, कर रहे हैं, लेकिन वो जमीन आपको नहीं मिलेगी, आपके पुत्र को नहीं मिलेगी, वो आपके पौत्र को संभावना है मिले, मतलब तब मिलेगी जब बाप दादा सभी खत्म हुए और पैसा लेने वाला वो भी मर जाएगा, तो कौन प्लॉट करेगा, कौन प्लॉटिंग करेगा, जमीन कब मिलेगी, और मिलेगी तो उसके बाद फिर अरबों डॉलर दीजिए अब घर बनाने के लिए, और कुछ दिन में कह दें कि यहाँ घर बन नहीं सकता है, सॉरी, और आपका पैसा खत्म हो गया, हम क्या करें। यही चल रहा है संसार में, छोटी बड़ी सरकारें सब इसी में लगी हुई हैं। और आज में हम लोग देखते हैं भारत में सरकार ही सबसे बड़ा बिजनेस कर रही है जनता के साथ, है ना, ये सत्य बात है। तो सरकार को, राजा को ऐसा होना चाहिए कि जनता का पालन करे, लेकिन जनता को ही खाने वाली सरकार हो जाए तो क्या दशा होगी। तो यही स्थिति है इस जगत की, इसलिए सावधान हो जाना चाहिए और भगवान का भजन करना चाहिए। भजन बहुत आसान है, केवल भगवान का नाम उच्चारण करना है, हरे कृष्णा 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 हरे 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 हरे। यही सब प्रवचन प्रह्लाद महाराज किए हैं, सार यही है कि भक्ति करनी चाहिए, भक्ति करने के लिए ही हमको ये मनुष्य का देह मिला है, भोगों को इकट्ठा करने और भोगने के लिए नहीं है। यदि अधिक भोग करेंगे तो भोग भोगेंगे तो ये शरीर अक्षम हो जाएगा, वो भोग ही नहीं सकता है। यदि भोजन खूब करने लगे माप से ज्यादा या घी आदि अधिक खाने लगे तो उसके कारण भी प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है, ये भोग भोगने के लिए है ही नहीं। इसमें तो बिल्कुल सीमित भोजन करना है, जल पीना है जिससे शरीर चले, शरीर भजन के लिए चल चलाना ठीक है, जीने के लिए। क्यों भोजन जरूरी है, जीने के लिए, तो खाएं हम जीने के लिए, ये नहीं कि जिए खाने के लिए। कुछ लोग जी रहे हैं केवल खाने के लिए, तो ये उचित नहीं है, खाएं जीने के लिए। पर जिए खाने के लिए तो कोई बहुत ज्यादा अनाज हो गया है क्या भारत में, इसीलिए ना सोचते हैं जिए और खाएं, नहीं, खाना चाहिए जीने के लिए। और जिए क्यों, जीव से तत्व जिज्ञासा, ब्रह्म जिज्ञासा के लिए जिए, भगवान को समझने के लिए जिए, भगवान से प्रेम करने के लिए, भगवान के विषय में सुनने के लिए, पढ़ने के लिए, इसके लिए जिए, व्यर्थ जीने के लिए नहीं। ये श्रीमद् भागवतम में बात कही गई, जीव से तत्व जिज्ञासा सदनार्थो जस्य कर्म दे, जीने का लाभ पैसा कमाना या कर्म करके और भोग संग्रह करना ये उद्देश्य नहीं है, जीना चाहिए, जिएंगे तभी भजन करेंगे, पर जिए भजन के लिए, भजन करते हुए जिए। तो कम से कम 16 माला जप महामंत्र का करना ही चाहिए। इसमें 2 घंटा लगता है, 24 घंटे में 2 घंटा महामंत्र के जप में बीते तो ये सौभाग्य होगा मनुष्य का। ये पवित्र नाम, इसी से हमें ज्ञान होगा, भगवान से प्रेम बढ़ेगा। हरे कृष्णा
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे हरे।
और यदि कोई आकस्मिक संकट आता है असुरों से तो भगवान नरसिंहदेव का स्मरण करना चाहिए, भगवान संभाल लेंगे, पर हमें अपना काम करना है। अपना काम है भगवान का नाम लेना, और भगवान का काम है सारे विश्व की रक्षा करना, खिलाना पिलाना सब। भगवान तो अपना काम करेंगे ही, वो अपने काम में लापरवाही नहीं करते हैं। तो भगवान के काम को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, भगवान करेंगे। हमारे घर का, समाज का, देश का वे पालन करेंगे, उन्हीं पर भार है। जैसे भगवान कृष्ण गोवर्धन पर्वत को उठाए थे तो भार तो उन्हीं पर था, फिर भी गोप लोग प्रेम बस अपनी लाठी लगा लिए कि हम उठाए हैं। और कभी कभी बहस होती थी तो भगवान से कहते थे, अगर हम सहारा नहीं दिए होते तो गोवर्धन गिर गया होता है। तो भगवान हंस करके मान लेते थे, लेकिन तत्वतः भार तो श्री भगवान पर ही था। तो इसी तरह से हमारे जीवन का, परिवार का, देह का, समाज का सारा भार उन्हीं पर है। वही प्रकाश दे रहे हैं, वही पानी दिए हैं, वही पृथ्वी बनाए हैं, और पृथ्वी से अनेक उत्पादन होते हैं। तो ये काम चल जाएगा भगवान की कृपा से। तो भगवान के द्वारा दिए हुए इन विषयों को, इन वस्तुओं को खा कर पी करके और उनका भजन करना चाहिए। हरे कृष्ण जय श्री कृष्ण।